16 दिसंबर 1971 की दोपहर, ढाका में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हथियार डालने से पहले पाकिस्तानी सेना के चोटी के अफसर दिन का खाना खा रहे थे। ऑब्जर्वर अखबार के संवाददाता गाविन यंग मेस के बाहर खड़े थे। उन्होंने वहीं खड़े हुए जनरल जैकब से पूछा, सर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं? सब लोग अंदर पहुंचे। जैकब ये देखकर दंग रह गए कि डाइनिंग हॉल में करीने से मेजें लगी हुई थी, कांटे छुरी और नैपकिन सजे हुए थे। जैकब को खाने की दावत दी गई, लेकिन जैकब का खाने का मन नहीं हुआ। वो उसी कमरे के कोने में अपने सहायक कर्नल एमएस खाड़ा के साथ खड़े होकर बात करने लगे। पाकिस्तानी अफसरों ने बहुत लुत्फ लेकर रोस्टेड चिकन खाया। बाद में गाविन यंग ने अपने अखबार में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था सरेंडर लंच। उसी दिन की सुबह पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जेएफआर जैकब के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर भारतीय सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ थे। कुछ साल पहले मुझसे बात करते हुए जनरल जैकब ने बताया था,
मानिकशॉ फोन्स, Jake, go and get a surrender. I said, I've already sent you a draft surrender document. Do I negotiate on that? He said, you know what to do, just go.
मानिकशॉ ने मुझे फोन किया, जेक जाओ और सरेंडर लो। मैंने कहा, मैं आपको पहले ही आत्मसमर्पण का मसौदा भेज चुका हूँ, क्या मैं उसके आधार पर पाकिस्तानियों से बात करूँ? सैम बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस तुम वहाँ जाओ। मैं वही दस्तावेज लेकर ढाका पहुंचा। ढाका हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मार्क हेनरी ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने पेशकश की कि वो सरकार पर नियंत्रण करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की। पाकिस्तान सेना ने मुझे लेने के लिए एक ब्रिगेडियर को कार के साथ भेजा हुआ था। जैसे ही हम पाकिस्तानी कार में आगे बढ़े, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने हमारी कार पर गोली चलाई। मैं कार का दरवाजा खोलकर चिल्लाया, इंडियन आर्मी। उन्होंने फायरिंग तो रोक दी, लेकिन वो मेरे साथ चल रहे ब्रिगेडियर को मार डालना चाहते थे। किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर नियाजी के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही मैंने उन्हें आत्मसमर्पण का दस्तावेज पढ़कर सुनाया, नियाजी बोले, कौन कह रहा है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? मैंने उन्हें कोने में बुलाया और उनसे कहा, मैंने आपको बहुत अच्छी शर्तें दी हैं, अगर आप हथियार डालते हैं तो हम आपका और आपके परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं आपको सोचने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला आया। मैंने सोचा, मैंने ये क्या कर दिया? उनके पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि हमारे पास सिर्फ 3,000, वो भी ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर।
जब जैकब आधे घंटे बाद कमरे के अंदर घुसे तो वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था।
Suppose he says no, what do I do? Aurora is going to land, ceasefire expires, what's going to happen if he doesn't agree? I went in after 30 minutes.
मैंने सोचा, अगर ये ना कह देते हैं तो मैं क्या करूंगा? एक घंटे में अरोड़ा वहां लैंड करने वाले थे। मैंने नियाजी से पूछा, क्या आप आत्मसमर्पण की शर्तों को स्वीकार करते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार उनसे यही सवाल किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने आत्मसमर्पण के दस्तावेज को ऊपर उठाकर कहा, आपके जवाब न देने का मतलब है कि आप इसे स्वीकार करते हैं।
जैकब ने नियाजी से कहा कि आत्मसमर्पण समारोह रेसकोर्स मैदान में ढाका की जनता के सामने होगा। नियाजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर जैकब ने नियाजी से कहा कि वो तलवार का सरेंडर करें।
See, I told Niazi to surrender his sword. He said, I don't have a sword. So I just surrender your pistol. So he took off his pistol, tears in his eye and gave it to Aurora. That's all.
मैंने नियाजी से कहा कि वो तलवार सरेंडर करें। उन्होंने कहा, मेरे पास तलवार नहीं है। तब मैंने कहा कि आप अपनी पिस्टल सरेंडर करें। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और भरी हुई आंखों के साथ अरोड़ा को सौंप दी। जब दस्तखत करने का समय आया तो नियाजी के पास कलम नहीं था। वहीं बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता सुरजीत सेन ने अपना कलम पेश किया। इस बीच दोनों जनरलों के बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। दस्तखत होते ही वहां मौजूद भीड़ नियाजी को मार डालना चाहती थी। हमने उनके चारों ओर एक घेरा बना दिया और फिर एक जीप में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया।
1923 में कोलकाता में जन्मे जनरल जैकब यहूदी परिवार से आते थे। 1942 में भारतीय सेना में आए जनरल जैकब ने दूसरे विश्व युद्ध में मध्य पूर्व, बर्मा और सुमात्रा की लड़ाई में भाग लिया था। 15 कोर की कमान संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जनरल जैकब को बचपन से जानते थे और उन्हें अंकल जेक कहकर पुकारते थे।
पहली दफे जब मैं उनसे मिला था 1961 की बात है, मैं उससे पहले हमारे खानदान के साथ उनका नाता 1951 से जुड़ गया था, जबकि वो अहमदनगर में मेरे वालिद साहब के साथ वो पोस्टर थे और बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। 1961 में वेलिंगटन नीलगिरीज तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन है इंडियन आर्मी का, वहाँ पर दोनों पोस्टर थे और मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। जनरल जेकब तो बैचलर थे ही, जैसे आपको मालूम है, उनके साथ उनके एक मित्र थे जनरल हरी शिंगल। हर वक्त आना जाना हमारे घर में होता था इन दोनों का, क्योंकि ये लोग तो बैचलर क्वार्टर्स में रहते थे और इनको खाना जो भी मेस का मिलता था वो खाते थे, मगर अक्सर शाम की का वक्त जो था इनका आमतौर पर बिताया जाता था हमारे घर में, जहाँ पर शेर व शायरी होती थी और जोक्स क्रैक किए जाते थे। और जब भी ये रात के वक्त पिक्चर देख के कभी आते थे 11:30-12 बजे, उनको खाना नहीं मिलता था तो आकर आमतौर पर मेरी माँ से ये विनती करते थे कि हमें कुछ खाना दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल जेकब जो थे उनके अर्ली ईयर्स एफ्टर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर, अब माई रिमेम्बरेंस जो है, मेरी रिमेम्बरेंस है, वो प्राइमरली एक वन ऑफ अ फन लविंग पर्सन, कैफ्री पर्सन बट हाईली प्रोफेशनल। अदरवाइज खेल जानते थे बहुत से, वो उनकी हॉबीज जो थी फिशिंग, एंगलिंग, एक उनसे ही मैंने सीखी एंगलिंग, और पहला उन्होंने मुझे एंगलिंग का जो टैकल था सबसे पहले जिंदगी में किसी ने मुझे दिया तो उन्होंने दिया था मुझे।
जेकब बहुत अच्छे चित्रकार थे और उन्हें एंटीक चीजें जमा करने का भी शौक था। उनको कविताएं पढ़ना भी बहुत पसंद था और वो ब्रिज खेलने के भी शौकीन थे।
उन दिनों में भी ये आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते थे और आई थिंक बहुत अच्छे वेल ट्रैवल्ड इंडिविजुअल थे, तो इनके पास दुनिया भर की चीज़ें थी। और खासियत इनकी थी कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स, इनके पास एक कलेक्शन ऑफ पर्शियन कारपेट्स था जो बाद में मैंने इनके घर में देखा नहीं जब मैं ये सोम विहार में रहते थे, ना मैंने इतने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखे, तो वो कहीं ना कहीं एयरलूम के तौर पर कहीं रखे होंगे। मगर हर अच्छी चीज़ दुनिया की, द फाइनर पॉइंट्स ऑफ लाइफ के ये अप्रिशिएटर थे हर वक्त। और खाने में मुझे ये याद है कि जब ये पूना में थे और हम लोग, हमारा ख़ानदान वेलिंगटन से हम कार में चला कर आ रहे थे दिल्ली आ रहे थे, हमारे सेंटर लैंसडाउन जा रहे थे, तो रास्ते में इनके साथ रुके और ये पहले दफ़े हम लोगों को खाने के लिए ले गए दुराबजी रेस्टोरेंट में, बड़ा मशहूर पारसी रेस्टोरेंट जो है पुणे कंटोनमेंट का, और वहाँ मैंने ज़िंदगी की पहली नान खाई, मुझे याद है। और हर अच्छा नॉन वेजिटेरियन डिश जो आप सोच सकते हैं बस उस दिन हाजिर था। तो इनको मालूम था कि किस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है लोगों को, जो अच्छे वेल हील्ड लोग हैं वो कैसे इंजॉय करते हैं। ही वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एट दैट। आपको मालूम होना चाहिए कि शायद फ़ौज में आमतौर पर ब्रिज को एक इंटेलेक्चुअल गेम समझा जाता है, बहुत दुनिया भर में ही समझा जाता है, एंड जनरल्स जो हैं खासतौर पर इनको बहुत पसंद होता है खेलना, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो मैनिपुलेटिंग योर ओपोनेंट, उसके बारे में होता है। तो हर दोपहर को ये लोग बैठ कर खेला करते थे। एंड वेलिंगटन जैसी जगह में वक्त बहुत कम मिलता है इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि बहुत करेक्शन का काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स का जो सबमिशन होता है, तो वो इंस्ट्रक्टर जो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हों, जो बहुत जल्दी करेक्शन करते हैं और बहुत क्विक ऑन दी अपटेक हैं, वही ब्रिज खेलने के लिए उनको वक्त मिलता है। सो आई डू रिमेंबर के इनको वक्त मिलता था और मेरे वालिद साहब को वक्त मिलता था, सो दे आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीपल।
1997 में जब उनकी किताब सरेंडर एट ढाका छपी तो उसमें उनकी एक टिप्पणी से काफ़ी बवाल मचा कि मानिक शाह ने ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना को दिया ही नहीं। मैंने जनरल जैकब से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते थे।
आई डोंट नो व्हाट हिज रीजंस वर, ऑल आई नो दैट द ओनली ऑर्डर्स आई गॉट वर टू टेक खुन्ना एंड चिटागोंग। वी हैड अ लॉन्ग आर्गुमेंट। आई टोल्ड हिम खुन्ना वाज ओनली अ माइनर पोर्ट, अ रिवर पोर्ट।
मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे कारण क्या थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे सिर्फ खुलना और चटगांव पर कब्जा करने का आदेश मिला था। मेरी उनसे लंबी बहस हुई। मैंने कहा कि खुलना एक छोटा सा नदी बंदरगाह है और चटगांव का भी कोई बहुत ज्यादा सामरिक महत्व नहीं है। अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें ढाका पर कब्जा करना ही होगा। मानेकशॉ बोले, अगर हम खुलना और चटगांव ले लेते हैं तो ढाका अपने आप गिर जाएगा। मैंने पूछा, कैसे? ये तर्क चलते रहे और हमें सिर्फ खुलना और चटगांव पर कब्जा करने के लिए ही लिखित आदेश मिले। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल इस बात की पुष्टि करते हैं कि ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने कभी रखा ही नहीं गया। हमारा लक्ष्य था बांग्लादेश की निर्वासित सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना।
बाद में जनरल जेकब की इस बात पर काफी आलोचना हुई कि शायद वो 1971 के युद्ध की सारी वाहवाही खुद लेना चाह रहे थे और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के योगदान को कम करके आंक रहे थे। जनरल अता हसनैन इस बात को सही नहीं मानते।
चीफ ऑफ स्टाफ कमांड जो अपॉइंटमेंट था उनका उस वक्त एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दिल्ली में, इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मैं कैप्टन हूं, आई मे हैव अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एंड ओपिनियन विद माय आर्मी चीफ, पर इसका मतलब नहीं कि मेरा परसेप्शन जो है वो सही है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई थिंक जो जनरल जेकब साहब कहते थे वॉज ए ओपिनियन विच ही वॉज एक्सप्रेसिंग एंड उसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए एंड इट्स अ गुड थिंग। किताब में आप लिखिए अपना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, किताब आपकी है, आप अपने थॉट्स अपने विचार जो हैं उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पर, तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग दैट। ये मेरे ख्याल में मीडिया ने बाद में इसके ऊपर ज़्यादा बात बढ़ाई कि ही हैड अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन विद द फील्ड मार्शल। मैं आपको इतना बताऊं कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ वॉज द कमांडर ऑफ स्टाफ कॉलेज 1961। वो जनरल जेकब को बेहद चाहते थे, ये मैं विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू दिस, क्योंकि अमंग द फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स मेरे वालिद साहब एक उनके बड़े फेवरेट इंस्ट्रक्टर थे और जनरल जेकब भी थे उनमें से एक, एंड ही यूज्ड टू नॉर्मली रिलाई ऑन दिस फ्यू इंस्ट्रक्टर्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर हिम। और जब सैम मानेकशॉ खुद ही ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे तो उन्होंने इनको चीफ ऑफ स्टाफ मांगा था। दैट इज हाउ जेकब साहब पहुंचे एज चीफ ऑफ स्टाफ टू कलकत्ता। तो पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त थी, प्रोफेशनल डिफरेंसेस इस तरीके के स्ट्रेटेजिक मैटर्स में जनरल्स के बीच में बहुत दफे आते हैं, बट दैट डज नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप्स इन एनी वे।
जेकब की मौत से कुछ महीने पहले मैंने उनसे पूछा कि 16 दिसंबर 1971 की रात को जब आप ढाका से कोलकाता वापस लौटे तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे।
मैंने सोचा जो हमारा जवान उसका जान दिया who died in action, unke liye hamara thoughts tha, we lost 1,400 killed, 4,000 wounded, hamara thoughts unke liye tha, desh unko pura credit nahi deta, dene chahiye, we should remember them, they made the jawans, ye jawans, unka bahadri se Bangladesh azadi kiya.
General Jacob 1978 mein sena se retire hue, बाद में उन्हें गोवा और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। जेकब की जितनी इज्जत भारत में थी उतनी ही इसराइल में भी। जॉन कॉल्विन की यहूदी सैनिक हीरोज पर लिखी किताब लायंस ऑफ जूदा में जनरल जेकब का भी जिक्र है। इसराइल के सैनिक म्यूजियम में भी जनरल जेकब की वर्दी अभी तक टंगी हुई है। वो भारत और इसराइल के बीच मजबूत रिश्तों के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने इसराइल जाकर बसने के सभी ऑफर्स को नामंजूर कर दिया था। उनका कहना था, मुझे यहूदी होने पर गर्व है, लेकिन मैं भारतीय था और हमेशा भारतीय रहूंगा और इसी जमीन पर मैं अपनी अंतिम सांस लेना चाहूंगा। रेहान फतल, BBC दिल्ली।